नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार जल्द ही राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति और रणनीति पेश करेगी। देश में आतंकवाद से लड़ने के लिए मजबूत व्यवस्था बनाए जाने का दावा किया। वन रैंक वन पेंशन योजना के 10 वर्ष पूरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ओआरओपी अपने सैनिकों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता प्रकट करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। केंद्र ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना दोगुना किया। त्यौहार मनाकर लौट रहे यात्रियों के लिए रेलवे कल से 164 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने की घोषणा की। और किरण जॉर्ज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सरकार जल्द ही आतंकरोधी नीति और रणनीति लेकर आएगी। नई दिल्ली में आतंकरोधी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद पिछले 10 वर्ष में आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रवैया अपनाया गया है। दो दिन के इस सम्मेलन को राष्ट्रीय अभिकरण अन्वेषण NIA ने आयोजित किया है। श्री शाह ने कहा कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के श्री मोदी के आह्वान की दुनिया भर में सराहना हुई है। श्री शाह ने कहा कि 2006 से 2013 की अवधि की तुलना में 2014 से 2021 की अवधि में आतंकी घटनाओं में 70% की कमी आई है।
10 साल के अंदर आतंकवाद के खिलाफ एक ठोस रणनीति लेकर भारत सरकार चली है। मोदी जी का एक घोष वाक्य जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, ये न केवल भारत समग्र विश्व ने आज स्वीकार किया है। भारत के अंदर टेररिज्म के खिलाफ लड़ने की एक मजबूत इकोसिस्टम खड़ी हुई। 10 साल के काम का विहंगावलोकन करें तो संतोषजनक चित्र हमारे सामने खड़ा हुआ है।
गृहमंत्री ने कहा कि आतंकवादी हमले और देश के खिलाफ आतंकवादियों की साजिश अदृश्य ढंग से रची जाती है। उन्होंने कहा कि युवा अधिकारियों को नवीनतम प्रौद्योगिकी वाला विशेष प्रशिक्षण दिए जाने की जरूरत है। गृहमंत्री ने कहा कि 3 नए आपराधिक कानून दुनिया भर में सर्वाधिक आधुनिक और तकनीकी दृष्टि से उन्नत कानून है। उन्होंने कहा कि हाल के समय में सुरक्षा से संबंधित कई कानूनों में परिवर्तन किया गया है। अपने भाषण में श्री शाह ने आजादी के बाद देश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने और सीमा सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले 36,468 पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी को लागू करने का निर्णय लंबे समय से चली आ रही मांग और अपने सैनिकों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता प्रकट करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के आज 10 साल पूरे होने पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये पहल उन योद्धाओं और भूतपूर्व सैनिकों के साहस तथा बलिदान को श्रद्धांजलि है जो राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर करते हैं। केंद्र की वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी योजना पूर्व सैनिकों के लिए उचित और समान पेंशन सुनिश्चित करने के वास्ते सरकार की परिवर्तनकारी योजना है। इस योजना में समान रैंक और समान सेवा अवधि के साथ सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों को समान पेंशन मिलती है, चाहे इनकी सेवानिवृत्ति की तारीख कोई भी हो। जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश का विशेष दर्जा और संवैधानिक गारंटी बहाल किए जाने का प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद विपक्ष के शोर शराबे के कारण आज दिनभर के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उप मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता सुरेंद्र कुमार चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को कल ध्वनिमत से पारित कर दिया गया था। आज जैसे ही विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने विपक्ष के नेता सुनील शर्मा के नेतृत्व में प्रस्ताव का विरोध किया और उसे असंवैधानिक बताया। दोनों पक्षों की ओर से नारेबाजी के बीच अध्यक्ष ने शुरू में 15 मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित की। हंगामा जारी रहने पर सदन को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए विभिन्न दलों के नेताओं और उम्मीदवारों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। एक रिपोर्ट।
महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना यूबीटी का घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में शिवसेना यूबीटी ने धारावी के निवासियों से धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए मौजूदा निविदा को रद्द करने का वादा किया है। एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने एमवीए उम्मीदवार दुनेश्वर पेठे के पक्ष में पूर्वी नागपुर में चुनाव प्रचार किया। प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी अगले 7 दिनों में राज्य भर में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
महाराष्ट्र में इस महीने की 20 तारीख को 288 सीटों पर मतदान होगा। विधानसभा चुनाव श्रृंखला में आज हम आपके लिए कोपरी पचपाखड़े विधानसभा सीट की जानकारी लेकर आए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सीट का प्रतिनिधित्व वर्तमान में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कर रहे हैं।
कोपरी पाचपाखाड़ी विधानसभा क्षेत्र ठाणे लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, जिसमें 5 अन्य विधानसभा क्षेत्र भी शामिल है। कोपरी पाचपाखाड़ी विधानसभा क्षेत्र 2009 में अस्तित्व में आया और उसके बाद से ही ये क्षेत्र हमेशा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गढ़ रहा है। एकनाथ शिंदे ने लगातार 2009, 2014 और 2019 में अपने विरोधियों को बड़े अंतर से हराया है। पिछले चुनाव में एकनाथ शिंदे ने कांग्रेस के उम्मीदवार संजय घाड़ीगांवकर पर 89,000 से ज्यादा वोटों के बड़े मार्जिन से जीत हासिल की थी। शिवसेना के विभाजन के बाद जहां एकनाथ शिंदे अपने पारंपरिक क्षेत्र से चुनाव मैदान में है, वहीं शिवसेना यूबीटी ने केदार दिघे को टिकट दिया है, जो ठाणे के ताकतवर नेता और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के राजनीतिक मार्गदर्शक दिवंगत आनंद दिघे के भतीजे है। आगामी चुनाव में कोपरी पाचपाखाड़ी के 5,45,110 मतदाता किसे अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। अंकित आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पराली जलाने पर जुर्माना दोगुना कर दिया है। सरकार ने कल राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में पराली जलाने से संबंधित वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के नए संशोधित नियम अधिसूचित किए। नए नियमों के तहत 2 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को अब 5,000 रूपये जुर्माना देना होगा, जो पहले 2,500 रूपये था। 2 से 5 एकड़ जमीन वाले किसानों को 10,000 रूपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति देनी होगी। जिन किसानों के पास 5 एकड़ से अधिक जमीन है, उन्हें 30,000 रूपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति देनी होगी। भारतीय रेलवे त्योहारों पर यात्रियों की सुविधा के लिए कल से 164 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। रेलवे बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि त्योहारों को देखते हुए विशेष ट्रेनों का परिचालन जारी है।
भारतीय रेल द्वारा 7,700 से अधिक गाड़ियों के परिचालन की महती योजना तैयार की गई है। 4 नवंबर को सबसे अधिक रिकॉर्ड संख्या में हम लोगों ने स्पेशल ट्रेनें चलाई और कुल मिलाकर के देश के विभिन्न हिस्सों से भारतीय रेल के माध्यम से 3 करोड़ से अधिक यात्रियों ने सफर किया, जो कि इस साल का अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 3 करोड़ की जो संख्या है वह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की कुल आबादी के बराबर है। स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का सिलसिला भी चलता रहेगा। आज भी हम लोग करीब 160 स्पेशल गाड़ियों का परिचालन कर रहे हैं और कल के डेट में हम लोग 165 विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन करेंगे।
छठ पर्व का आज 3रा दिन है। श्रद्धालु नदी के किनारे स्थित विभिन्न छठ घाटों पर आज शाम डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे। 4 दिन के इस पर्व का समापन कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा। बिहार में इस पर्व के लिए सभी तैयारियां हो चुकी हैं, जहां लोग छठ व्रती गंगा, गंडक, कोसी, बागमती, पुनपुन और अन्य नदियों के खूबसूरती से सजाए गए तटों पर डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पूरा वातावरण भक्तिमय गीतों से गूंज रहा है।
छठ व्रती अपने परिवार के सदस्यों के साथ अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को सांध्य अर्घ अर्पित करने के लिए छठ घाटों पर पहुंचने लगे हैं। 100 से अधिक छठ घाट गंगा नदी के किनारे बनाए गए हैं। छठ घाटों पर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं और वॉच टावर के माध्यम से भीड़ पर नजर रखी जा रही है। नदियों में गश्त लगाने के लिए टीमों की तैनाती की गई है। इसके अलावा किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा बोर्ड के साथ NDRF और SDRF के जवान नदी घाटों पर जमे हुए हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
हमरा सुन ली पुकार। प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार आज बिहार के पटना में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। गंगा नदी के तट पर गुलाबी घाट पर अंतिम संस्कार के समय बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव और अश्विनी कुमार चौबे भी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाने की घोषणा की है। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसे लागू करने में विफल रहते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर जुर्माना लगाया जाएगा। युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पर सोशल मीडिया के प्रभाव से बढ़ती चिंताओं के बीच ये अभूतपूर्व पहल है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य इस महीने संसद में कानून पेश करना है। उन्होंने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। हालांकि ये निर्दिष्ट नहीं है कि प्लेटफॉर्म को आयु सीमा कैसे लागू करनी चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गोवा में स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर सवार होकर समुद्र में नौसेना के अभियानों को देख रही हैं। इसमें सतही जहाजों का संचालन, युद्ध कार्रवाई, पनडुब्बी अभ्यास, हवाई शक्ति प्रदर्शन, लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों की उड़ान तथा नौसेना विमानों के फ्लाईपास्ट शामिल हैं। इससे पहले दिन में राष्ट्रपति को डाबोलिम में नौसेना वायु स्टेशन INS हंसा पर एक औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। भारत के किरण जॉर्ज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने आज प्री क्वार्टर फाइनल में ताइवान के ची यू जेन को 21-17, 19-21, 21-17 से पराजित किया। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया ए के साथ दूसरे अनौपचारिक क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन भारत ए की टीम पहली पारी में 161 रन पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया ए ने दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 2 विकेट पर 53 रन बना लिए थे। आज राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत वर्ष 2014 में 7 नवंबर को हुई थी। कैंसर जागरूकता दिवस का उद्देश्य कैंसर की रोकथाम, शीघ्र पहचान और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन पोलिश फ्रेंच भौतिक विज्ञानी और रसायनज्ञ मेरी क्यूरी की जयंती भी है, जिनके रेडियम और पोलोनियम की अभूतपूर्व खोजों ने कैंसर के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गोवा में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ 20 से 24 नवंबर तक फिल्म बाजार के 18वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसमें समृद्ध विविधता पेश करने वाली 208 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा।
फिल्म बाजार के समीक्षा कक्ष में उन फिल्मों का प्रदर्शन होगा जो पूरी तरह बन चुकी हैं या अंतिम चरण में हैं। इनमें 145 फीचर फिल्में, 23 मध्यम लंबाई वाली और 30 लघु फिल्में शामिल हैं। इससे फिल्म निर्माताओं को वैश्विक फिल्म प्रोग्रामर, वितरकों, बिक्री एजेंटों और निवेशकों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। फीचर और मध्यम लंबाई वाली श्रृंखला में 12 फिल्में भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC द्वारा निर्मित या सहनिर्मित है। NFDC के प्रबंध निदेशक प्रितुल कुमार ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य कहानीकारों को उनके दृष्टिकोण को दुनिया के साथ साझा करने के लिए सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि निगम अगली पीढ़ी के कलाकारों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। समाचार कक्ष से नेहा गोस्वामी।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा सरकार जल्द ही राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति और रणनीति पेश करेगी। देश में आतंकवाद से लड़ने के लिए मजबूत व्यवस्था बनाए जाने का दावा किया। वन रैंक वन पेंशन योजना के 10 वर्ष पूरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ORP अपने सैनिकों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता प्रकट करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। केंद्र ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना दोगुना किया। त्योहार मनाकर लौट रहे यात्रियों के लिए रेलवे कल से 164 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने की घोषणा की और किरण जॉर्ज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।